نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے خوبصورت اصول دیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. صبح سے شام، شام سے رات اور رات سے دن ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کسی ایک تعریف کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اس وقت ہمارا سب کا یہاں جمع ہونا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اس پہ بھی اگر ہم الحمدللہ دل کی گہرائی سے کہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت کا بہترین استعمال ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر اس کا کچھ تقاضا بھی ہو جاتا ہے. تو میں اپنے لیے خاص طور پہ دعا کروں گی کہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بات کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ یہ صرف ایک بات نہ ہو، ایک گھنٹہ نہ ہو، بلکہ اس کا اثر ہماری آنے والی پوری زندگی پہ پڑ جائے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارا یہ ملنا جنت میں مل بیٹھنے کا ذریعہ بن جائے، یہ پہلا قدم ہو ہماری زندگیوں کے انقلاب کا. ہمارے دلوں میں جو تڑپ ہے، جو طلب ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان دے دے. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ زخرف کی 3 آیات کی تلاوت کی ہے. میں چاہوں گی کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ کیا ہے کہ انر سیٹسفیکشن کیسے ملتی ہے، خوشی کیا ہے اور خوشی ملے گی کیسے، اور عموماً ہم لوگ کیسے ڈھونڈتے ہیں خوشیوں کو. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ بہت ہی ایسا ہے کہ جو آج کے دور کا ایک فیمس مسئلہ ہے، اور وہ کیا؟ فن. کیا اسلام میں کوئی فن نہیں؟ بچے بھی کہتے ہیں اسلام از اے بورنگ ریلیجن، کیا ہم یہ نہیں کر سکتے، کیا ہم وہ نہیں کر سکتے. ہر بندہ خوشی کی تلاش میں نظر آتا ہے آج. آج کے دور کا ایک طاغوت کہہ لیں، یا آج کے دور کا ایک ہرڈل جو انسان کو اللہ کے راستے میں آنے سے روکتا ہے، وہ فن ہے. تو انشاءاللہ تعالی مختلف اینگل سے ہم بات کریں گے کہ دل کیا چاہتا ہے، اس کی خوشی کس چیز میں ہے، اور ہم اس کو کن چیزوں میں بہلاتے ہیں. آیت کا ہلکا سا ترجمہ اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گی. سورہ زخرف کی آیت 36 ہے: وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے، یعنی غافل ہو جائے. سوچئے ذرا، من جہاں بھی آتا ہے یہ ایک فل ان دی بلینکس ہوتی ہے. ہو کون ہو سکتا ہے؟ ہر ایک اپنا نام لکھ سکتا ہے اگر اس کی یہ کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ہی خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، لوگوں کے نام نہیں دیے، شخصیات کو اچھالا نہیں، کسی کو رسوا نہیں کیا، بات تھرڈ پرسن میں کی، اسی کا یہاں ذکر ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کوئی ہے ایک، یہ نہیں کہا کہ تم ہو یا فلاں ہے یا فلاں ہے، کسی کا نام نہیں لیا تاکہ سننے والا خود بخود اپنی حالت کو دیکھ کے اس کے اندر اپنا نام لکھ سکتا ہے اگر اس کی یہ کیفیت ہے. کیا؟ اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے، یعنی غافل ہو جائے. ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں तो वो इसका साथी हो जाता है और ये शैतान इनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो ये समझते हैं कि सीधे रास्ते पर हैं। यहाँ तक कि जब हमारे पास आएगा तो कहेगा कि ऐ काश मुझ में और तुझ में मशरिको मगरिब का फासला होता, तू बदतरीन साथी निकला। बात कुछ इस तरह से है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में अगर हम देखें तो आपने फरमाया कि हर इंसान पर अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता और एक शैतान मुकरर किया है। फरिश्ता उसको नेकी का हुक्म देता है और शैतान उसको बुराई का हुक्म देता है, माइल करता है। शैतान कहता है बुराई कर लो, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सुई, 13वें पारे की पहली आयत का एक हिस्सा है कि वमा उबर्रियु नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बेगुनाह करार नहीं देता। क्यों? कि इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सु, कि नफ्स तो बुराई का हुक्म ही देता है। ये नफ्स क्या है? ये शैतान है। एक जंग आपने अपने अंदर देखी होगी और ये जंग शुरू हो जाती है सुबह उठते ही। फजर का वक्त है, अलार्म बोलता है, आपकी आंख खुल जाती है, आपके अंदर से कोई आपको कहता है उठो नमाज पढ़ो, नमाज का वक्त है उठो। इतने में ही अंदर से कोई एक और आवाज आती है, अभी सो जाओ, अभी बहुत वक्त है, अभी देखो ना वो फलां, जाओ पहले तुम बाथरूम में जाओ। जिस घर में एक बाथरूम होता है वहां तो शैतान को और मौका मिल जाता है, पहले तुम पहले तुम। दिन भर हर काम में कोशिश क्या करते हैं, पहले मैं पहले मैं, मुझे मिल जाए ये चीज, मैं इसमें आ जाऊं। लेकिन नेकियों के मौकों पे दूसरों को मौके देते हैं और इतने में इंसान सो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आंख लग जाती है, अच्छा अभी पढ़ लूंगी ना, एक ही दफा उठूंगी, बच्चों को भी तो स्कूल भेजने के लिए उठना ही है ना, और अभी तो बहुत टाइम है, चलो थोड़ा सा और सो लूं, और फजर तो रहती है 1 घंटा तक, सूरज निकलने से पहले पढ़ लूंगी, और इसी कश्मकश में आंख लग जाती है। और अमूमन जब आंख खुलती है तो सूरज निकल चुका होता है। अगर ये कैफियत रही तो वो शैतान जो उस बुराई को खूबसूरत कर रहा था वो खुश होगा। ये है वो कैफियत, वमन याश अन जिक्र रहमान नुकय्यिस लहू शैताना, जो अल्लाह की याद अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरेगा हम उसके ऊपर एक शैतान को मुसल्लत कर देंगे। तो फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ जिक्र से मुराद नमाज है, और कुरान पाक में कई जगह पे नमाज को जिक्र के साइमल्टेनियस यानी उसके बिलमुकाबिल इस्तेमाल किया गया कि नमाज अदा करो मेरी याद के लिए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी यही हुक्म दिया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया था कि मेरी याद के लिए नमाज पढ़ो। अब होता क्या है, नुकय्यिस लहू शैतानन, शैतान उसके दिल पे विराजमान हो जाता है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शैतान इंसान के दिल पर सीना तान के बैठ जाता है। तसव्वुर में लाएं जरा, कोई दुश्मन है और सीना खोल के दिखाता है कि आओ मेरा मुकाबला करो। ये कैफियत कब होती है? जब एराज होता है अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से। अब क्या होता है कि इंसान शैतान के शिकंजे में आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लम की एक और रिवायत से ये बात मालूम होती है कि जब रात को इंसान सोता है तो शैतान उसके बालों में, उसकी गुद्दी में 3 गिरहें लगाता है, नॉट्स लगाता है, कुछ पकड़ा इधर से पकड़ा, नॉट लगा दिया, फिर दूसरी नॉट, फिर तीसरी नॉट, और हर गिरा लगाते हुए क्या कहता है, सो जा रात बड़ी लंबी है, सो जा रात बड़ी लंबी है। इतने में सहर का वक्त होता है और अजान की आवाज आती है, वो बंदा उठता है, अजान सुनता है, शैतान की पहली गिरा खुल जाती है, यानी लूज हो गई नॉट। फिर उसके बाद वो उठता है और वजू करता है, दूसरी नॉट भी खुल जाती है। फिर उसके बाद वो जिक्र अस्कार करता है, वक्त पे नमाज पढ़ता है, तो तीनों गिरें खुल गईं। और आपने फरमाया कि सारा दिन वो इंसान शैतान के कब्जे से बाहर निकलता है। इसका असर कैसे दिखता है? उसका दिल हशाश बशाश, एक खुशी, इनर पीस, सेटिस्फेक्शन, खुशी का एहसास। ये तो है एक कैफियत। तस्वीर का दूसरा रुख भी आपने दिखाया कि जब फजर का वक्त हुआ, ना वो शख्स उठा, ना अजान सुनी, ना वजू किया, नमाज पढ़ी, कुछ जिक्र अस्कार कुछ नहीं किया, और सोता रहा सारा दिन। यानी फजर का वक्त निकल गया, अब सूरज चढ़ने के बाद उठा। एक तो असर इसका क्या आपने बताया, एक और हदीस में कि जब कोई शख्स फजर की नमाज के बाद तक सोता रहता है तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। कभी बदबू महसूस हुई? और आपने फरमाया कि सारा दिन वो शख्स शैतान के कब्जे में रहता है। इसकी अलामत क्या है? उसका दिल बुझा रहता है, सुस्ती, कसलमंदी, सारा दिन नेकियों में दिल ही नहीं लगेगा। क्यों? कि वो तो किसी और के शिकंजे में है, वो तो नॉटेड है, वो टाई अप है, शैतान ने उस पर कब्जा डाला हुआ है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फहुवा लहू करीन, वो उसका दोस्त बन जाता है। और करता क्या है? दोस्त दोस्त होते हैं ना, शैतान की दोस्ती इंसान को क्या देती है? वह इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनि सबील। पहली चीज, शैतान की दोस्ती की पहली एक समझें कि कंडीशन कह लें या सिम्टम कह लें, वो क्या है कि इंसान को हक के रास्ते से रोकते हैं। जब भी पूरा दिन इंसान नेकी की तरफ जाने लगता है ना, तो वो उसको रोक देगा। खाम खई सुस्तियाँ, कितनी नेकियों के मौके आएंगे वो जाया कर देगा। हो सकता है चंद घंटे के बाद जोहर का वक्त आ जाए, वो कहेगा चलो पढ़ लूँ, अजान की आवाज़ कान में पड़ी, अच्छा अभी पढ़ती हूँ, अच्छा ज़रा ये काम कर लूँ, अच्छा ज़रा किचन साफ कर लूँ, खाना पका लूँ, बच्चे आने वाले हैं, अच्छा बच्चों को स्कूल से ले आऊँ, फिर सुकून से पढ़ूंगी। ये नहीं कहता कि ना पढ़ो, टलवाता है, टालता रहता है, पोस्टपोन, अभी पढ़ेंगे, मैं अच्छी पढ़ती हूँ, मैं जब पढ़ती हूँ तो अच्छी तरह पढ़ती हूँ, जरा सारे कामों से फारिग हो लूँ। अब बच्चे आ गए, चलो ये बेचारे सुबह से भूखे थे, अब इनको पहले खिला लो, उनको खिलाते खिलाते खुद भी खा लिया, चलो जरा ये किचन साफ कर लो। और इसी देर इतनी ही देर में फिर ऊंग आने लगती है, चलो कैलूला भी तो सुन्नत है ना, और जोहर थोड़ी देर से भी तो पढ़ ही लेते हैं, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो। वो कमर सीधी नहीं होती, वो फिर उस वक्त आंख खुलती है जब असर भी कजा हो जाती है। इन्नहुम लयसुद्दून अने सबील, सीधा रास्ता। सबील क्या है? सिराते मुस्तकीम, जिसकी दुआ हम सब दिन में कम अज कम 17 बार नमाजों में करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पे तेरे इनाम हुए। वो नबी थे, वो सालेहीन थे, वो शुहदा थे, वो नेकियां करने वाले लोग, उनका रास्ता दिखा, ना कि उनका जिन पे तेरे गजब हुए और जिनसे तू नाराज हुआ। सारा दिन उस रास्ते से दूर रखवाता है, फिर इंसान का दिल और खराब चीजों में लगता है। और एक वक्त आता है कि फजर तो गई थी, जोहर भी जाती है, और असर मगरिब की भी तौफीक नहीं होती। कभी आपने किसी के मुंह से एक बात सुनी हो, नमाज का वक्त होता है तो आप उन्हें कहते हैं कि आइए नमाज पढ़ लेते हैं, तो आगे से एक बहुत ही भोला सा जवाब मिलता है कि मैं जिस दिन फजर नहीं पढ़ती उस दिन मैं कोई भी नहीं पढ़ती, आज मेरी फजर रह गई थी इसलिए अब मैं बाकी भी नहीं पढ़ूंगी। ये है उस शैतान का कलाम कि एक छूटा तो दूसरा भी छुड़ा लो। जब मुसलसल यही कैफियत रहती है ना इंसान की, ये तो सिर्फ नमाज का मामला है ना, फजर छोड़ दी नींद के लिए, जोहर छोड़ दी खाने के लिए, असर छोड़ दी कैलूले के लिए मगरिब छोड़ दी इसलिए कि दिन जाने का एहसास है, ये भी निपटा लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, फिर रात हो जाएगी और ईशा के वक्त दोबारा बच्चों के सुलाने और घर की सेटिंग्स में गुजर गई। तो याद रखिए कि ये कैफियत कौन सी है, शैतान के हक से रोकने की। जो इंसान ऐसा करता है फिर शैतान उसका दोस्त बन जाता है। फिर सिर्फ नमाज नहीं छुड़ती, जब जिंदगी से नमाज निकलती है ना तो एक बंध टूट गया जो आपको बुराइयों की तरफ बहने के अंदर रुकावट थी ना, वो नमाज थी। कैसे? 21वें पारे की सबसे पहली आयत में अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं, इन्न सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और मुनकर से। यानी जो नमाज पढ़ता है वो बेहयाई नहीं करेगा, वो मुनकर नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है कि दिन में 5 बार मैंने अपने मालिक के सामने जाना है, मैंने दिन में उसको 17 बार कहना है, या कना बुदू व या कनस्ताइन, ए अल्लाह मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ, मैं सिर्फ तुझसे मदद तलब करती हूँ। अगर मैंने कोई गलत काम कर लिया तो रब को मुंह क्या दिखाऊंगी। इस जवाबदेही का एहसास इंसान को उस गुनाह से रोक लेता है और इंसान फिर गुनाह नहीं करता। ये तो कोई तसव्वुर नहीं है कि इंसान 5 वक्त नमाज भी पढ़े और गुनाह के वक्त में गुनाह भी ना छोड़े। ये तो आज के दौर का तोहफा है कि मस्जिद में है तो नमाजी, घर में है तो कुछ और, बिजनेस में है तो कुछ और। कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाई कर दिया दीन को, नमाज के वक्त नमाज, बिजनेस हमारी मर्जी का। आज के दौर के तकाजे हैं, नहीं बच सकते, गलत तरीके करेंगे। पूछे कोई तो क्या कहते हैं, वो नमाज है, ये कारोबार है, ये हमारा बिजनेस है। बड़े से बड़े गलत काम करने वाले लोग भी अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, नमाजों से नहीं रुकते, नमाजें पूरी हैं। आज भी गए गुजरे दौर में अगर आप देखें तो 40 से ऊपर के जो लोग हैं उनमें से हो सकता है 50% लोग तो नमाज पढ़ते ही हैं, लेकिन उस नमाज का असर कितना है तबीयत पे, मामूलात पे, मामलात में, अखलाक पे, ना होने के बराबर। क्यों? कि नमाजें बेरूह हो गईं। नमाज तो पढ़ी लेकिन एक एक्सरसाइज, एक रिचुअल, एक मजहबी फरीजा, सिर्फ इसलिए पढ़ी कि ना पढ़ेंगे तो काफिर हो जाएंगे, दैट्स इट। नमाज वो नहीं थी कि जो रब से मुलाकात थी, कि जिसमें बंदा खड़ा होता है अल्लाह अकबर हाथ खड़े करता है, अपने रब की बड़ाई का एहसास करता है कि अल्लाह मैं इस चीज़ का यकीन दिलाती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तू ही बड़ा है, बड़ा नहीं सबसे बड़ा। जहाँ तेरी बात आएगी ना मेरी चलेगी, ना मेरे नफ्स की चलेगी, ना मेरे ख़ानदान की चलेगी, ना मेरे मुआशरे की चलेगी, ना मेरे बच्चों की चलेगी। ज़रा सोचिए क्या वाकई अमली ज़िंदगी में ऐसा होता? एक तरफ नफ्स का तकाजा है सो जाओ, एक तरफ है हय्या अलस्सलाह, एक तरफ नफ्स चाहता है सो जाओ और एक तरफ आवाज़ आती है सलात खैरुम मिनन नौम, उठो नमाज नींद से बेहतर है। किसकी सुनते हैं? बस जिसकी मानेंगे वो इला है, उसको बड़ा कर लिया। एक तरफ शौहर का नाजायज तकाजा है और एक तरफ है अल्लाह की बात, किसकी सुनते हैं? एक तरफ मुआशरे के तकाजे, रस्म व रिवाज, शादियां, खुशी गमी, चारों तरफ से खतरों में जकड़े हुए हैं, जिसकी मान लेते हैं वो बड़ा। एक दिन का सिर्फ अपना हिसाब करके देख लें, और ख़ास तौर पे वो दिन जो ज़्यादा खुशियों में गुजरे, किसी शादी का मौका हो, 3-4 दिन खूब मसरूफियत के गुजरे। हमारा हाल तो क्या है कि आम दिनों में तो फिर भी अच्छे रहते हैं, जैसी भी हो 5 नमाजें पढ़ लेते हैं, कुछ जिक्र अजकार भी हैं, कोई इतनी बेपर्दगी भी नहीं, वक्त भी अच्छा ही गुजरता है, कुछ सुन भी लेते हैं जो अल्लाह चाहता है। ज़रा खुशी का मौका आ जाए सबसे पहले छुटता है तो क्या, नमाज। शादी को ले लें, मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में और हमारे कल्चर में शादी सबसे ज़्यादा खुश होने का एक ज़रिया है। जिसकी होती है वो तो खुश है, दूसरे पता नहीं क्यों खुश होते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। एक वक्त था कि दुल्हन के तैयार होने की तैयारियां होती थी कि दुल्हन कैसी लगेगी, आज उसके साथ साथ धुलने और तैयार हो रही होती है। एक वक्त आता है कि दुल्हन खुद परेशान होती है उसके साथ कौन जाएगा, क्योंकि सबको तैयार होना है। एक वक्त तो सिर्फ दुल्हन का कपड़ा बनता था, उसका जोड़ा बनता था, आज उतने ही ज्यादा जोड़े साथ दूसरों के बनते हैं। बास जगह तो देखा गया, दूल्हे की माँ का भी बनता है कि मेरे तो अरमान ही नहीं पूरे हुए थे बेटे की शादी पे, है कि नहीं? चले, शादी अल्लाह का ही नाम है, हकीकत है। सबसे ज्यादा जो कुछ सोचता है ना अपने बारे में, वो शादी का दिन ही सोचा जाता है। बचपन में लड़की होती है तो गुड़िया की शादी करती है, सोचती है गुड्डी गुड़े की। आजकल नहीं वैसे करती, ये तब की बात है जब लड़कियां गुड़िया से खेलती थी। आज तो हमने बच्चियों के हाथों से भी गुड़िया छीन ली, आज हमने बड़ी औरतों के हाथों से बच्चे तो छीने ही हैं, क्योंकि उनके हाथों में गाड़ियों के स्टेयरिंग दे दिए, मशीनों की चाबियां दे दी, कीबोर्ड दे दिए और कंप्यूटर दिए कि तुम इनको पालो। आज आपको तक ऐसी तस्वीरें आम करके दिखाई जाती हैं कि माँ की गोद में बच्चा है और उसको नीचे बैकवर्ड औरत दिखाया जाता है। वो गोद जो बच्चे की हिफाजत के लिए थी, वो सीना जो बच्चे की गजा के लिए था, आज हमने उसको उस दुनियावी आराइश और जिबाइश के लिए इस्तेमाल किया। बच्चे पले कहीं और, हम जा रहे हैं कुछ और करने, लेकिन अल्लाह ताला ने तो वो दिया ही था, वो हुआ ही था। आज निस्वानियाँ छिन गई, बचपन से बच्ची की निस्वानियाँ छीन लेते हैं। लड़कों के साथ खेलना, लड़कों जैसे पहनना, खेलें एक, गेम्स एक, बात करने का अंदाज एक। आज बच्ची और बच्चे की पैदाइश के तरीके में कोई फर्क नहीं दिखता, हालांकि जमीन आसमान का फर्क है। पहले दौर में माएँ बच्चों को पालती थी तो ब्रेवरी के तरीके पे पालती थी, मुजाहिदीन के किस्से सुनाती थी, उनको इस्लाम के लिए तैयार करती थी, और बच्चियों को सिखाती थी तो उनको घरदारी, उनको हया, मॉडेस्टी, उनके अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त, मिजाज में ठहराव, एडजस्टेबल होना, टॉलरेंट होना, ये सब सिखाती थी। जब आज मेयार बदले, दोनों के एक लेवल पे ले आए, तो वो बच्ची भी बड़े होने तक एक लड़का ही बन चुकी होती है। बहुत जगह औरत को मर्द बना दिया, उसकी निस्वानियाँ छीन ली। लेकिन चलिए मिसाल लेते हैं कि लड़की होती है तो उसके मेलान में होता है कि गुड़िया की शादी। फिर थोड़ी सी बच्ची बड़ी होती है, जवान होने के करीब होती है, तो माँ बाप को फिक्र लगने लगती है, ये बड़ी हो रही है, अब इसकी शादी करनी होगी, अच्छा घर मिल जाए, ये हो। फिर जब इंसान खुद मिच्योर होता है, प्यूबर्टी की एज आती है, तो फिर उसके बाद अपने दिल में जज्बात आने लगते हैं कि अब शादी होनी चाहिए, अब घर होगा, अब मियाँ होगा। फिर थोड़े साल बच्ची और बढ़ जाए तो शादी ना हो तो खानदान रिश्तेदार पूछना शुरू हो जाते हैं, इसकी की है कहीं, मांगा कहीं, रिश्ता हुआ, यानी शादी शादी, ऐसे लगता है कि ये दिन बड़ा है। फिर वो दिन भी आ जाता है कि जो जिस दिन का इंतजार है, और वो दिन तो ऐसे होता है हमारा कि पांव जमीन पे ना रहे, हमसा कोई हो तो आए सामने। ऐसे लगता है बाद लोग सारी जिंदगी जो कमाते, मेहनत करते और जो भी उनकी एफर्ट्स हैं उसका फुल एक्सपोजर या तो अपनी शादियों पे है या अपने बच्चों की शादियों पे है। और ये मारूफ जुमला है हमारे यहाँ कि इंसान कमाता किस लिए, बच्चों ही के लिए तो है। आज के दौर में ये सवाल लोग करते हैं ना कि जवान बच्चियां हैं, क्या मैं हज कर लूँ, उनकी शादियों से फारिग हूँ कि हज करूँ। हालांकि हज की शरायत में कहीं नहीं ये मिलती कि पहले बच्चियों के खूब धाम धड़क्के से निकाह कर लो, शादियां कर लो, फिर हज करना। और किसी की जवान बच्ची है तो वो हज ना भी करे तो खैर है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन वही शादी का दिन जो शादी होने के बाद भी हर साल लोगों को याद आता रहता है, और उसके बाद लोग फिर एनिवर्सरीज की सूरत में उसको मनाते हैं। पहले तो लोग पहली मनाते होंगे, दूसरी मनाते होंगे, और अब जो ट्रेंड्स चल पड़े, आपको भी मेरे से ज़्यादा पता होगा कि अब ये हमारी सिल्वर जुबली हो रही है। पिछले दिनों मुझे किसी ने खबर दी कि किसी की शादी की 25th एनिवर्सरी थी और उसको मनाया गया, पूरी शादी हुई, 5-6 दिन के उपटन, मेहंदियाँ, शादी के जोड़े बने और वो खातून को पूरा दुल्हन बनाया गया। हम कहाँ जाएंगे जब हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं होता, जब हम इस ज़िंदगी का मकसद ही भूल गए, जब शैतान ने दिलों पे कब्ज़े डाल लिए, जब हमने दिल को मस्नूई सहारों से खुश करना शुरू कर दिया, जब हमने अपने आप को ऐसी चीज़ों से बहलाना शुरू कर दिया जो हमसे कमतर थी। आज दिल को किससे बहलाते हैं? अच्छे कपड़ों से। कपड़े किससे बने? मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, अच्छे जेवरात से। क्या है? धात है, जैसे लोहा है वैसे गोल्ड है, फर्क क्या है? वो सफेद है, ये गोल्डन है, ये चमकता है, उसकी चमक जरा कम है। आज हम डायमंड्स को पाने के लिए अल्लाह को कई बार नाराज करने को तैयार हैं कि डायमंड मिल जाए। हम अपने आप को मस्नूई चीजों से खुश करते हैं। हमारे यहाँ आज खुशी का मेयार क्या है? अच्छा पहन लो, अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, अच्छे घर बना लो, लग्जरियस गाड़ियां आ जाएं। देखिए कि इससे आपकी लाइफ में लग्जरी तो आ जाएगी, खुशी नहीं आएगी। सच्ची खुशी कहाँ है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब। जान लो, मालूम हो जाए तुम्हें ये बात कि अल्लाह की याद में दिलों को सुकून है। अल्लाह ताला सूरत रात आयत 28 में फरमाते हैं, अल्लज़ीन आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, उनके दिलों को तो आराम मिलता है अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से। क्यों? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो कि अल्लाह की याद से दिल आराम पाते हैं। सवाल पैदा होता है क्यों? सूरत रात आयत 28, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था ना, थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगी आपको जो शायद आपने कई बार सुनी होगी। मिट्टी के साथ आदम अलैहिस्सलाम का स्ट्रक्चर बनाया। पहले सूखी मिट्टी ली, उसको गूंदा, जब वो गीली हो गई फिर उसको कुछ दिन तक रख दिया बाहर, खूब कीचड़ बन गई, लेसदार, लाजिब, चिपकने लगी, फिर उसमें बदबू पैदा होगी, जर्म्स पैदा हो गए। ये जो हमारे अंदर लाइफ का असर है, ये जर्म्स है ना, जिंदगी एक हरकत है ना, तो उस मिट्टी के अंदर जब जर्म्स पैदा हुए, एक जिंदगी पैदा हुई, फिर उसका एक ढांचा रखा, स्केल्टन बना दिया, एक आदम का खौल बना दिया, फिर उसको कहा आप धूप में पको। जैसे कच्ची मिट्टी के बर्तन बनते आपने देखे हो, पहले गूंदी जाती है, फिर उसको चिपकाया जाता है, फिर उसको एक स्केल्टन दिया जाता है, एक स्ट्रक्चर बना के फिर उसको धूप में रख देते हैं, कई दिन तक वो बर्तन उसमें रहते हैं। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम का स्ट्रक्चर फिर सुखाया गया, फिर वो ठीकरी की तरह बचने लगी। ये सारे मरहले कुरान पाक में, खनकने लगी, खोखली। जब ये बुत तैयार हो गया, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फनफख्तु फीही मिन रूही, फिर अल्लाह ने उनमें अपनी रूह फेंकी। मेरे और आपके अंदर अल्लाह की रूह है, अल्लाह का हुक्म है, अर्रूहु मिन अम्री रब्बी। सूरह बनी इसराइल में एक आयत है कि यसअलूनका अनिर रूह, ये रूह के बारे में पूछते हैं ये क्या है, तो इनको कह दो अर्रूहु मिन अम्री रब्बी, मेरे और आपके अंदर जो जिंदगी है ये अल्लाह का अमर है। जब वो कुन कहता है, बच्चे में जान पड़ जाती है। माँ के पेट में 4 महीने का हमल होता है तकरीबन, फरिश्ता आता है और बच्चे की रूह डाल जाता है, उसका खुशबख्त और बदबख्त होना लिख जाता है, उसकी उम्र कितनी होगी ये लिख जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अल्लाह की रूह हमारे अंदर, अल्लाह की ज़ात हमारे अंदर है, इत्मीनान वाली रूह है। वो रूह नहीं चाहती कि गुनाह करें, हमारी रूहें नहीं चाहती कि हम शिर्क करें, हमारी रूहें नहीं चाहती कि अल्लाह को नाराज़ करें। उसको इत्मीनान कैसे मिलता है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी होती है ना, उसको उसी चीज़ में चैन आता है। इंसान अपने हम जोलियों में खुश रहता है ना, बच्चे बच्चों में खुश रहते हैं, औरतें औरतों में खुश रहती हैं, टीन्स टीन्स में खुश रहते हैं। हमारी रूह अल्लाह के हुक्म से बनी, तो उसको चैन का पड़ता है जब उसको अल्लाह की याद दिलाई जाती है, अल्लाह का जिक्र। कभी आपने अल्लाह सुभान तआला के कलाम की मजलिस में अपने दिलों को टटोला? ऐसे नहीं लगता जैसे दिल घुल रहे हैं, ब्लेंड हो रहे हैं, एक ओस बरसती है? ये किस चीज़ की अलामत है? कि अल्लाह की याद आपके दिल की ग़िज़ा। आज के दौर में एक जुल्म किया हमने, और वो क्या, जुबान मुंह पे लाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन जो लोगों का बोला हुआ जुमला कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, म्यूज़िक इज़ द फूड ऑफ सोल, बड़ा मारूफ जुमला है हमारे यहाँ। हमारी रूहों की ग़िज़ा मौसीकी नहीं है, हमारी रूहों की ग़िज़ा अल्लाह की याद है। जिस चीज़ से बने हैं उसी से ही चैन पड़ेगा। अब देखिए कि हर चीज़ की एक डिमांड है ना, मसलन हमारी ज़ुबान को टेस्ट चाहिए, आप इसके ऊपर एक कोई अच्छी टेस्टी चीज रख दें, एक कैंडी रख दें, टेस्ट अंदर जाएगा ना। आप एक मजे की चीज को एक पकोड़ा रख दें, टेस्ट जाएगा ना, क्योंकि जुबान टेस्ट कॉन्शियस है। अब आप इस पे जुबान पे अच्छी टेस्टी फूड की बजाय आप सोने की एक डली रखें, जुबान को मजा आएगा कि इसको चाटो। चांदी की एक डली रख दें, डायमंड रखेंगे तो शायद वैसे ही मर जाए। चलें, हमारे कान सुनते हैं, ये किस चीज से लुत्फ लेते हैं? बड़ी सॉफ्ट आवाज हो कोई, बहुत दिल में उतरने वाली बात हो। आप इस कानों के अंदर डालिए कोई ऐसी चीज, परफ्यूम डालना शुरू कर दें, या कोई ऐसी चीज जो आपका दिल चाहे वो डाल दें, कानों को मजा आएगा। आंखें किस मंजर से खुश होती हैं जो दिल फरेब हो? खूबसूरत चीजें, खूबसूरत नज़ारे। आप कहें नहीं, हमें तो चाट मसाला बड़ा पसंद है, डालें आंखों में, आंखें उस चाट मसाले का मजा नहीं लेंगी। जुबान पे रखेंगे तो मजा आएगा, आंखों में डालेंगे तो आंखें जलेंगी। इसी तरह याद रखिए, हर चीज की एक वजह होती है। हमारी रूह अल्लाह की याद के लिए बनी, जैसे अल्लाह की याद के लिए बनी, इसको सुकून मिलेगा तो अल्लाह की याद से मिलेगा। हम बहलाते हैं बल्कि बहकाते हैं, अच्छे कपड़े पहन लो, देखना बहुत खुशी मिलेगी। फिर ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जो दूसरों को तो कुछ अच्छे लगे, खुद को चुभ रहे हैं, अंदर से खा रहे हैं कपड़े, आप अकड़े पड़े हैं क्योंकि दूसरे आपको देख के खुश हो रहे हैं। क्या ख्याल है, आपकी दोस्तें आपके अच्छे कपड़े देख के खुश होती? वो तो सोच में पड़ जाती हैं, मेहनत तो मैंने की थी, मेरा ख्याल था आज मेरे जैसा कोई नहीं होगा, ये भी आ गई। हाँ, वो जरूर देख के खुश होंगे जिनको होना नहीं चाहिए। वो कौन है? औरतें तो नहीं खुश होती औरतों के कपड़े देख के, वो तो तकाबुल में पड़ जाती हैं। तो बात क्या है कि हमारी रूह आर्टिफिशियल चीज़ों से नहीं जाएगी। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीर अल मुक़न्तरति मिन अज़्ज़हबी वल फ़िद्दा। अल्लाह ने कहा ये खूबसूरत बना दी गई हैं चीज़ें, शहवात की मोहब्बत, औरतें, सोना, चांदी, घर, लेकिन तुम्हें इससे ऊपर जाना है। अउनब्बियुकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें इससे अच्छी चीज़ ना दिखाऊँ? और वो क्या है? अल्लाह की रज़ा और वो जन्नत। तो हम अगर अपनी ज़िंदगियों में हकीकी खुशी लाना चाहते हैं, इत्मीनान लाना चाहते हैं, अपने आप को नफ्से मुतमईना बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए इसको ज़ाहरी मादी चीज़ों से नहीं, रूहानी चीज़ों से खुश करना पड़ेगा। जितना अपने आप को अल्लाह की याद से जोड़ेंगे, अल्लाह की बात से जोड़ेंगे, उतना ही इत्मीनान आएगा। एक सच्ची खुशी किस चीज़ से मिलती है? यानी हमारे ज़हन में एक सवाल उठना चाहिए कि हम खुश होना चाहते हैं, मैं खुश रहना चाहती हूँ। हर दौर में लोग ये सवाल करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। तो किस चीज़ से दिल को खुशी मिलेगी अगर हम स्टेप्स में लिखें तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। सिर्फ आपको, आपकी सोच को उजागर करने के लिए पॉइंट्स दूंगी, ताकि आप लोग फिर उसके मुताबिक अपने आप को टेस्ट कर सकें। पहली चीज़ जो इंसान के दिल को मुतमईन करती है, इत्मीनान देती है, वो एक अल्लाह पर ईमान, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस दिल में अल्लाह की याद बसा लो, इस घर में उसके सिवा कोई और न रहे। जब बंदा एक अल्लाह के ऊपर राजी हो जाता है ना, तो उसको करार पकड़ता है, उसको करार मिलता है। मैं आपको दावत दूंगी, किसी भी न्यूली कन्वर्टर से मिलें जो आपके एरियाज़ में, आपकी कम्युनिटीज़ में मुस्लिम हो, फिर उनसे पूछें कि आप बताइए कि आप मुसलमान क्यों हुई, इस्लाम से पहले आपके दिल की हालत क्या थी और इस्लाम के बाद क्या है। तो वो आपको इसका जवाब देंगे, कंटेंटमेंट। एक रब का हो जाना बंदे को फोकस कर देता है, वो एक सजदा जिसे तुम गिरा समझता है, हजार सजदों से दिलाता है आदमी को निजात। एक का बन जाने में जो खुशी है ना, वो दर दर का बनने में नहीं है। अगर हम एक रब के बन जाते हैं ना, तो सारे हमारे बन जाएंगे, और हम सबको अपना बनाना चाहेंगे तो कोई हमारा नहीं बनेगा। तो पहली चीज, इस दिल में अपने रब को बसा लो। तुम्हारी यादों में तुम्हारा रब, तुम्हारी तमन्नाओं में तुम्हारा रब, उसी की मोहब्बत, उसी की चाहत, उसको बसाओ। और अल्लाह ने अपने रहने की जगह कहाँ बनाई? अल्लाह नूर उस समावाती वल अर्द। अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमाता है कि अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, यानी कहाँ है? पूरी आसमान और जमीन, पूरी दुनिया में देखो, अल्लाह का नूर दिखेगा। लेकिन ये नूर खुद कहाँ रहता है? मसल नूर ही का मिश्कात, बंदे मोमिन के दिल में खुद फैला हुआ है। और इस नूर को ढूंढना हो तो वो किधर है? ईमान वाले के दिल में अल्लाह का नूर है, अल्लाह की मोहब्बत है। जैसे एक फानूस, उसमें एक चिराग चमकता हुआ, ऐसे ईमान वाले के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है। अल्लाह की मोहब्बत बंदे को मसरूर कर देती है, बेचैन कर देती है, खुश नहीं रहती, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, करके देखें उससे दोस्ती, करके देखें मोहब्बत, जीने का लुत्फ आएगा। बेगम कर देगी आपको ये मोहब्बत, बेखुद कर देगी। आज दुनिया में हम देखते हैं लोगों को नाजायज़ मोहब्बत हो जाती है, एक लड़के और लड़की को बगैर किसी बेस के मोहब्बत हो जाती है। खोए रहते हैं ना उन्हीं के ख्यालों में, बातें करें तो उनसे, बैठें तो उनके पास, तसव्वुर रहता उनका। वो रिश्ते जिन्होंने सारी ज़िंदगी मोहब्बतों से पाला होता है, उनके सामने ज़ुबान मिल जाती है कि मैं जाऊंगी तो इधर ही जाऊंगी, मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। ये अंदर की मोहब्बत बोलती है ना। और वो क्या है? एक गोश्त पोश का इंसान हो सकता है कि अच्छा इंसान ना भी हो, अच्छा भी हो तो इंसान क्या है? मैं कहती हूँ कि जब इंसान अपने आप को देखता है ना, अपनी हस्ती को पहचानता है, तो उसको समझ में आता है मैं हूँ क्या। जब हम इंसानों के शहर में खो जाते हैं और रब को भूल जाते हैं, उस वक्त अपने आप को याद दिलाया करें ये इंसान है क्या। जाहिर पे ना देखें, असल पे देखें। और फिर यही बात कहूंगी कि इंसान को असल देखनी है ना अपनी या किसी इंसान की, उस वक्त देखें जब रेस्ट रूम से बाहर आते हैं। इतनी गंदगी भरी हुई है हमारे अंदर, अपने जिस्म से निकली हुई गंदगी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो हमारे अंदर गंदगी अगर बाहर आ जाए तो आप देखिए कि कोई हमारे से बात ना करे, कलाम ना करे। ये है इंसान, गंदगी का मजमुआ, बदबू का मजमुआ। दिन में कई बार उसको जाके फारिग होने की जरूरत पड़ती है। कोई बादशाह है तो भी पसंद नहीं करेगा कि कोई दूसरा उसके लिए ये काम करे। ये है इंसान, जिन इंसानों के लिए उस मालिक को नाराज करते हैं कि जो नूर उस समावाती वल अर्द। इसलिए अगर हकीकी तौर पे खुश रहना चाहते हैं तो अल्लाह से मोहब्बत करना सीखना है। ईमान वालों की तो ये पहचान है, वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बल लिल्लाह। ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, उनका दिल चाहता है रब से बातें करें, उनका दिल चाहता है रब के चेहरे का दीदार करें। वो तन्हाइयों में भी हैं तो वो कहते हैं अल्लाह मैं तुझे कब देखूंगा। फिर ईमान वाला जिंदगी भर रब से मुलाकात की तमन्ना में जीता है, और यहाँ तक कि उसको अपनी मौत प्यारी हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, दुनिया में बेहतरीन चीज़ एक मोमिन की मौत है, लजीज तरीन चीज़। क्यों? के दो ही चीज़ें हैं जो बंदा मोमिन की तलब है, जन्नत और अल्लाह के चेहरे का दीदार, अल्लाह को पाना। और ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी में मुमकिन नहीं, ये अल्लाह का वादा है। मौत की मंजिल से गुजर के फिर रब का दीदार होगा। जिनको चैन आता है ना, वो पत्थर खाते हैं, अल्लाह के रास्ते में तीर पड़ते हैं, और वो कहते हैं फुज तो भी रब भी काबा, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। आप कभी तारीख के वाकयात देखते होंगे तो आप भी सोचते होंगे क्या इनको दर्द नहीं होता था, चोट नहीं पड़ती थी? बिलाल रजी अल्लाह तआला को चोट नहीं लगती थी? क्या वो हमारे जैसे गोश्त पोश के इंसान नहीं थे? लेकिन पत्थरों भी लिटाए जाते हैं, चर्बी पिघल पिघल के आपको बुझा देती है, उनकी मेल्ट होती है चर्बी, उसकी वजह से आग बुझती है, लेकिन जुबान पे की लफ्ज है अहद अहद। क्यों ये बेखुदी थी? इसलिए कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, जो दुनिया में किसी की मोहब्बत में चूर होते हैं ना, उसको भी परवाह नहीं रहती दुख दर्द की, गम की, इज्जत की, बेइज्जती की, माँ बाप की मोहब्बत की। तो जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, क्या उसको गम आएगा, उसको दर्द होगा? कभी नहीं होता। बीबी सुमैया रजी अल्लाह तआला इस्लाम की पहली शहीदा, शायद आपको ये बात मालूम हो कि इस्लाम के नाम पे जो पहला शख्स या औरत या इंसान मरा वो एक औरत थी। औरत की कुर्बानियों से इस्लाम फैला। दीन इस्लाम की पहली शाहिदा एक औरत थी, बीबी खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। जब नबी सल्लम पे वही उतरी, इकरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक, तो आपने ये आके खबर सबसे पहले अपनी बीवी को दी। ये इस्लाम तो ये औरतों के कारनामों की वजह से फैला। आज की औरत ने कहाँ गुम कर लिया अपने आप को? आज की औरत कहाँ खुशी ढूंढती है? आज किन तमन्नाओं में जी रहे हैं? असल खुशी क्या थी? अल्लाह के साथ ताल्लुक बन जाए। फिर अल्लाह के साथ जब मोहब्बत होती है, तो फिर इंसान अपने आप को इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में महसूस करता है। उन्हीं में एक औरत बीबी सुमैया थी, अबू जहल की लौंडी थी। और बस अल्लाह की बात समझ आ गई, तौहीद समझ आ गई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे समझ आ गए। कहा कि बस अब तू कौन और मैं कौन? तपती हुई रेत के ऊपर लेटाता था अबू जहल। सिर्फ बीबी सुमैया नहीं, उनके पूरे घराने को। इनके शौहर का नाम यासिर था, इनके बेटे का नाम अम्मार बिन यासिर था। और एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरते हैं कि देखा कि ये सारे घराने वाले आग पे लिटाए गए, तपती हुई रेत पे लिटाए गए। आपने वहां खड़े होके कहा था, सब्रन अला आली यासिर, ए यासिर के घर वालों सब्र करो, इन्नी मौईदुकुमुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत का वादा देता हूँ। सारी दुनिया के लोग तो तन्हा जन्नत में जाएंगे, तुम पूरे घर वाले इकट्ठे जन्नत में जाओगे। और अबू जहल का जब बस न चला, तो बीबी सुमैया का एक पाँव एक ऊँट के साथ बांधा, दूसरा पाँव दूसरे ऊँट के साथ बांधा, और दोनों को मुखालिफ सिमत में चला दिया। तीर उनकी शर्मगाह पे डाला और जिस्म दो टुकड़ों में बट गया। लेकिन देखने वालों ने देखा कि बीबी सुमैया के चेहरे पे मुस्कुराहट है। जान ले ली, मुस्कुराहट नहीं ले सका। क्यों? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तूअदून। उनको जन्नत दिख रही थी, वो क्यों ना मुस्कुराती? उनको अल्लाह से मोहब्बत हुई, जान गई तो जाए, कुछ नहीं, क्योंकि निगाहें तो आगे लगी हुई थी। इसी तरह की एक औरत जो अपने दौर की फर्स्ट लेडी थी, पहली जो मिसाल दी ये एक लौंडी की दी, गरीब पिसे हुए लोगों के लिए मिसाल, एक रोल मॉडल। और दूसरी मिसाल उन लोगों के लिए जो दुनिया की ऐशो इशरत में पल रहे हैं, दौलत जिनके घर की बांधी है, इज्जत शोहरत माल आम है, पूरी सोसाइटी वाले उनको झुक झुक के सलामे करते हैं। ये भी चीज़ें अल्लाह के रास्ते से रोकती हैं ना। ऐसी औरत को जब अल्लाह की पहचान हो गई और वो डट गई अपने शौहर के सामने, फिरौन की बीवी थी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम, जब मूसा और जादूगरों का मुकाबला हुआ, तो उस मंजर को देख के जहाँ बाकी लोग मुसलमान हुए, उसमें फिरौन की अपनी बीवी भी मुसलमान हो गई, अपने घर की हिफाजत ना कर सका, इस्लाम ले आई। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ? कहा, बात समझ आ गई है, उसे एक रब का रब होना समझ आ गया। कुल हुवल्लाहु अहद। कहा, मैं रब हूँ? कहा, तू रब नहीं है। कैद में डलवा दिया। रिवायात में आता है कि रातों को रोता था बीबी आसिया की याद में, कहता था वापस आ जाओ। कहा, अब नहीं आना, अब पता चल गया वो कौन है, कल तक बात और थी, आज पता चल गया कि मेरा मालिक कौन है।